ये आकाशवाणी दिल्ली है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी के 111 गांवों में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी आपूर्ति का उद्घाटन किया। दिल्ली के वन और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का ओखला लैंडफिल साइट का दौरा, लेगेसी वेस्ट के निस्तारण और बायोमाइनिंग के कार्य का निरीक्षण किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की। जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की सरकार से संबंधित सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन निलंबित किए और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज राष्ट्रीय राजधानी के 111 गांवों में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी आपूर्ति का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई सांसद, राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि पीएनजी की आपूर्ति महज एक तकनीकी परियोजना नहीं है, बल्कि स्वच्छ और उज्ज्वल भविष्य के लिए एक ठोस आधार है। उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती ऊर्जा से जोड़ती है, बल्कि दिल्ली को पर्यावरण के अनुकूल और सतत राजधानी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सक्सेना ने कहा कि यह कार्य दिल्ली ग्रामोदय अभियान की भावना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य गांवों को शहरी स्तर के बुनियादी ढांचे से लैस करना और समग्र तथा संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शुरुआती चरण में 130 गांवों को पाइपलाइन कनेक्शन दिए गए थे और मौजूदा दूसरे चरण में 111 गांवों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 116 गांव अभी भी बचे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि इस वर्ष के अंत तक उन्हें भी पाइपलाइन कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पीएनजी कनेक्शन शुरू होने से रसोई गैस लगातार उपलब्ध होगी, जिससे लीकेज सहित सभी संबंधित मुद्दों का समाधान हो जाएगा।
शहरी क्षेत्र में तो बहुत पहले से गैस की पाइपलाइन बिछना शुरू हो गई थी, परंतु गांव देहात इससे अछूता था। कोई सोच भी नहीं रहा था कि गांव में भी पाइपलाइन लग सकती है, परंतु हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले फेज में 130 गांवों में घर घर पाइपलाइन बिछवाई। पाइप के माध्यम से गैस घर घर पहुंच जाएगी, 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।
दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह कदम केंद्र सरकार के हर रसोई से धुआं हटाने के लक्ष्य का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 111 गांवों के साथ आज एक नया अध्याय शुरू हुआ है।
नई दिल्ली की शुरुआत हो रही है और वो शुरुआत गांवों से हो रही है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में, रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार दिल्ली को केवल लाल किले और कर्तव्य पथ पर नहीं देखती है। दिल्ली की असली पहचान दिल्ली के 300 से अधिक गांवों और सैकड़ों कॉलोनियों में भी बसती है, जिसमें से 111 गांवों में आज पीएनजी देकर एक नई युगांतकारी ओकेजन को हम अपने सामने होते और घटते देख रहे हैं।
दिल्ली के वन और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह के साथ ओखला लैंडफिल साइट का दौरा कर वहां पड़े लीगेसी कचरे के निस्तारण और बायोमाइनिंग के कार्य का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर श्री सिरसा ने रेखांकित किया कि दिल्ली सरकार के अथक प्रयासों से ओखला लैंडफिल की 62 एकड़ भूमि में से लगभग 30 एकड़ समतल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ओखला लैंडफिल साइट पर 60 लाख टन लेगेसी कचरा मौजूद था, जिसे बायोमाइनिंग के जरिए 20 लाख टन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कूड़े के ढेर को इस वर्ष के अंत तक समतल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह लक्ष्य अक्टूबर में ही पूरा कर दिया जाएगा।
मोदी जी का विजन था, माननीय रेखा गुप्ता जी उस पे काम कर रही हैं, और 2025 जिस साल में हम बात कर रहे हैं, इसके अक्टूबर तक आप देखेंगे यहाँ से 20 लाख मैट्रिक टन लेगेसी कूड़ा, उसको भी हम हटाने का काम करेंगे और ये लगभग पहाड़ आपको दिखना बंद हो जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में एक भी कूड़े का पहाड़ एक इंच भी ना हो, ये 2028 का जो हमारा टारगेट है, यही मोदी जी का वादा था और इस वादे को पूरा करने के लिए हमारी टीम रात दिन लगी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री का विजन है, दिल्ली के प्रधानमंत्री जी का संकल्प था दिल्ली को विकसित बनाने का, और ये विकसित दिल्ली का कदम है।
वहीं महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि लैंडफिल साइट के आसपास स्थित कॉलोनियों में रहने वाले लोग दुर्गंध ईंधन से परेशान है और दिल्ली नगर निगम का प्रयास है कि इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करके यहाँ पार्क विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कड़ी में सरकार के सभी मंत्री सड़कों पर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं।
हमारे दिल्ली सरकार के मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा जी, हमारे बहुत ही सत्कारयोग आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी और मैं स्वयं यहाँ पर आया। हमने ये देखा कि ये काम कैसे चल रहा है, क्योंकि हमने एक वादा किया था दिल्ली की जनता के साथ कूड़ा मुक्त और स्वच्छ दिल्ली का, तो क्लीनिनेस तो अब शुरू होगी। स्वयं जो हमारी सीएम साहिबा रेखा गुप्ता जी खुद सड़कों पे जा रहे हैं, डीसिल्टिंग अपने हम लोग अपने हाथों से कर रहे हैं।
सरकार ने 2028 तक दिल्ली के सभी लैंडफिल साइट्स को साफ करने का लक्ष्य रखा है, जिससे राजधानी को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज एक उच्च स्तरीय 41 सदस्यीय इथियोपियाई प्रतिनिधिमंडल से दिल्ली विधानसभा परिसर में विशेष संवाद किया। ये प्रतिनिधिमंडल 12 से 17 मई तक राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा आयोजित एक सप्ताह कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत भारत की यात्रा पर है। इस अवसर पर श्री विजेंद्र गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली विधानसभा की कार्यप्रणाली, ऐतिहासिक विरासत और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों की जानकारी दी। अपने संबोधन में श्री गुप्ता ने भारत और इथियोपिया के बीच सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु तथा डॉक्टर विवेक जोशी ने आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ नई दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग में बैठक की। आयोग ने बताया कि यह बैठक राष्ट्रीय और राज्यों के राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ की जा रही बैठकों का एक हिस्सा है। उन्होंने रेखांकित किया कि इससे राष्ट्रीय और राज्य पार्टी अध्यक्षों को अपने सुझाव तथा चिंताओं से आयोग को अवगत कराने में मदद मिलती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की सरकार से संबंधित सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन निलंबित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय ने बताया कि निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है और वो राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़ा है। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के सराय काले खां स्टेशन से जंगपुरा स्टेबलिंग यार्ड को जोड़ने के लिए बारापुला फ्लाईओवर पर 200 टन के स्टील स्पैन को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने बताया कि स्टील स्पैन में 4 स्टील गर्डर्स लगे हैं और प्रत्येक की लंबाई 40 मीटर है तथा वजन 50 टन है। NCRTC की टीम ने इस प्रक्रिया को प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और यातायात पुलिस के सहयोग से पूरा किया है। NCRTC का लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को आम जनता के लिए संचालित कर दिया जाए। वर्तमान में न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ नमो भारत स्टेशन के बीच 55 किलोमीटर के खंड में 11 स्टेशनों पर नमो भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
दिल्ली मेट्रो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ आज औपचारिक रूप से एकीकृत हो गया, जिससे यात्री अब विभिन्न निजी ऐप्स के जरिए मेट्रो टिकट खरीद सकते हैं। इस पहल के माध्यम से दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC की टिकटिंग सेवाएं अब मोबिलिटी ऐप, ट्रेवल प्लेटफॉर्म, यात्रा योजनाकार और यहां तक कि टेलीग्राम बॉट पर भी उपलब्ध हैं। DMRC ने बताया है कि 65 लाख यात्रियों की औसत दैनिक संख्या के साथ दिल्ली मेट्रो का ONDC नेटवर्क पर शामिल होना एक अंतर संचालित, सुलभ और यात्री अनुकूल डिजिटल मोबिलिटी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह कदम सुनिश्चित करता है कि मेट्रो की पहुंच यात्रियों की मौजूदा डिजिटल दिनचर्या में निर्बाध रूप से शामिल हो। इससे पहले DMRC ने पिछले वर्ष नवंबर में अस्थायी रूप से ONDC नेटवर्क पर एक सॉफ्ट लॉन्च के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की थी। राजधानी के पीतमपुरा स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आज आग लग गई। दमकल विभाग को आग लगने की सूचना करीब सुबह 9 बजे मिली। विभाग ने बताया कि यह आग कॉलेज के पुस्तकालय में लगी थी, जिस पर दमकल की 11 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 1 घंटे के भीतर काबू पा लिया। सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार ने आज संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। शपथ आयोग के वरिष्ठ सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने दिलवाई। डॉक्टर कुमार 1985 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 2024 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए MSME से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एक रिपोर्ट।
एमएसएमई ने एक बयान में कहा कि इच्छुक उद्यमी इस महीने की 20 तारीख तक विभिन्न श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में एमएसएमई को 35 राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि सरकार एमएसएमई उद्यमों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनके योगदान को मान्यता देती है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान करके प्रोत्साहित करती है। बयान के अनुसार महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमियों के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पुरस्कार का विशेष प्रावधान है। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल और गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अतहर सईद।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80IAC के तहत आयकर छूट के लिए 187 स्टार्टअप को मंजूरी दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित स्टार्टअप अब आवेदन करने के पात्र हैं, जिससे नए उद्यमों को इस वित्तीय राहत का लाभ उठाने के लिए अधिक समय और अवसर मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि कर लाभ के अंतर्गत पात्र स्टार्टअप को निगमन की तारीख से 10 साल की अवधि में लगातार 3 वर्षों के लिए मुनाफे पर आयकर में 100% छूट देने का प्रावधान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने आज नई दिल्ली में इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया ताकि ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे मनाया जा सके। एक रिपोर्ट।
इंक्लूसिव इंडिया समिट के अवसर पर विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, व्यक्तियों के लिए भाषा, जीवन, शिक्षा और जीवन यापन तक पहुंच की महत्ता पर जोर दिया गया है। उन्होंने सरकार के हस्ताक्षर भाषा सीखने के प्रयासों को रेखांकित किया और कॉरपोरेट सेक्टर से भी विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आह्वान किया। ये समिट समावेशीय विकास और डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे हर साल मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल पहुंच और समावेशन के बारे में जागरूकता फैलाना है। इंक्लूसिव इंडिया समिट इस वैश्विक मिशन के साथ मेल खाता है, जो भारत की तकनीक और सार्वजनिक सेवाओं को सभी के लिए अधिक समावेशीय बनाए जाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि वैशाख बुद्ध पूर्णिमा न केवल एक धार्मिक उत्सव है बल्कि सभ्यतागत उत्सव भी है। नई दिल्ली में वैशाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं धर्म से परे हैं और भारतीय समुदाय के रूप में उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि देश में 7 समुदाय हैं और भगवान बुद्ध हर उस धर्म का हिस्सा है जो शांति को कायम रखता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि राजधानी के वायु गुणवत्ता स्तर में वृद्धि कुशासन के कारण नहीं बल्कि असामान्य मौसम के कारण है। इससे पहले सुश्री आतिशी ने आरोप लगाया कि सरकार की कुव्यवस्था के कारण राजधानी में वायु गुणवत्ता स्तर में मई में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया के माध्यम से श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र सेवा को समर्पित राजस्थान की माटी के लाल और जननायक श्री शेखावत ने सदैव पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि सादगी और संघर्ष से परिपूर्ण उनका जीवन प्रत्येक भारतवासी के लिए प्रेरणा है। वहीं श्री गुप्ता ने कहा कि देश हित में श्री शेखावत का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप होने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी के 111 गांवों में पाइप्ड नेचुरल गैस PNG आपूर्ति का उद्घाटन किया। दिल्ली के वन और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का ओखला लैंडफिल साइट का दौरा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की। जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की सरकार से संबंधित सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन निलंबित किए और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।